ये रेडियो नेपाल है। अब मीनू प्रधान से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र की स्थायी कमेटी की बैठक ने महासचिव पद पर देव गुरुंग सहित 20 पदाधिकारियों के नाम किए तय। नेपाली कांग्रेस ने आगामी चुनाव लक्षित अभियान के कार्यक्रम किए सार्वजनिक। देशभर में आज कोरोना के 299 मामले आए सामने और अफ्रीकी देश सोमालिया के मोगादिशु स्थित हयात होटल में आतंकवादी हमला, कम से कम 12 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी केंद्र ने पार्टी पदाधिकारियों के नाम तय किए हैं। आज पार्टी मुख्यालय पेरिस टाड़ा में हुई स्थायी कमेटी की बैठक ने पदाधिकारियों का निराकरण किया। अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने बैठक में एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, 7 उप महासचिव, 9 सचिव और एक कोषाध्यक्ष सहित 20 पदाधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए थे। ये प्रस्ताव बैठक द्वारा पारित किए जाने के बाद आज पदाधिकारियों का निराकरण हुआ। पदाधिकारियों में देव प्रसाद गुरु, महासचिव नयनकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा, उपाध्यक्ष लगायत शामिल हैं। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा ने संचार कर्मियों को बताया कि पदाधिकारियों का निर्धारण विशेष अधिवेशन तक के लिए हुआ है। इसके अलावा बैठक ने आगामी चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नयनकाजी श्रेष्ठ के नेतृत्व में 17 सदस्यों की कमेटी गठित करने के साथ ही कई अन्य निर्णय भी किए। नेपाली कांग्रेस ने मार्गशीर्ष 4 गते के लिए तय प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव लक्षित चुनावी अभियान के कार्यक्रम सार्वजनिक किए हैं। नेपाली कांग्रेस ने आज पार्टी मुख्यालय सानेपा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर चुनाव लक्षित जनता के साथ कांग्रेस अभियान के कार्यक्रमों को सार्वजनिक किया। अभियान अंतर्गत नेपाली कांग्रेस भाद्र 10 गते से 24 गते तक पहले चरण समानुपातिक उम्मीदवारों की बंद सूची पेश करने के बाद दूसरे चरण और प्रत्यक्ष चुनाव के लिए उम्मीदवारी पंजीकरण के बाद तीसरे चरण के कार्यक्रम संचालित करेगी। ये बात पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महत ने बताई। उन्होंने बताया कि इस दौरान नागरिकता विधेयक, एमसीसी समझौता लगातार विभिन्न विषयों में नेपाली कांग्रेस की भूमिका और कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में जनता को समझाने का लक्ष्य कांग्रेस ने रखा है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने आज विश्व कीर्तिमान करने वाले पर्वतारोहियों का सम्मानित किया। इन आरोहियों में सानू शेरपा, नीमा ग्यालजिन शेरपा और पासांग लामू शेरपा शामिल हैं। बता दें कि सानू शेरपा ने 8000 मीटर से ऊंचे विश्व के 14 हिम पर्वतों का 2 बार सफल आरोहण करके विश्व कीर्तिमान बनाया है। इसी तरह नीमा ग्यालजिन शेरपा ने 8000 मीटर से ऊंचे विश्व के 14 हिम पर्वतों का आरोहण कर कीर्तिमान बनाया है। वहीं पासांग लामू शेरपा पाकिस्तान के नागा पर्वत का आरोहण कर पहली बार महिला आरोही का कीर्तिमान बनाने में कामयाब हुईं। मौके पर ये कहते हुए कि नेपाली आरोहियों के इन कीर्तिमानों ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में नेपाल की पहचान को और अधिक सम्मानित करवाया है, प्रधानमंत्री देउवा ने इनकी प्रशंसा की। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रभावित करने और चुनाव की स्वच्छता एवं निष्पक्षता पर दुष्प्रभाव डालने जैसी कोई भी नई परियोजना या कार्यक्रम संचालन न करने और न करवाने के लिए तीनों तहों की सरकारों को निर्देश किया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड़ेल ने आज एक बयान के जरिए साझा की है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के साथ नेपाल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आवासीय प्रतिनिधि रिचर्ड होवर्ड, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और यूरोपियन यूनियन के राजदूतों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने आज भेंटवार्ता की। प्रचंड निवास खुमलटार में आज हुई भेंटवार्ता में प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल की शांति प्रक्रिया के निराकरण में उनका सकारात्मक सहयोग और सद्भाव रहेगा। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सब को यो विश्वास होनी नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाँकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कहा कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य सूचना प्रविधि का विकास कर घर घर में रोजगारी देना है। सुनसर की बरहा क्षेत्र नगर पालिका वार्ड नंबर 10 प्रकाशपुर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कार्की ने कहा कि देश में रोजगारी की व्यवस्था न होने के कारण देश के युवा खाड़ी देशों में जाकर जोखिम वाले काम करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन अब इस परिस्थिति का अंत करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाओं को लाने की तैयारी में है। इसी बीच आज ही मंत्री कार्की ने सुनसरी बरहा क्षेत्र नगर पालिका वार्ड नंबर 6 और 8 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने कहा कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य संविधान की रक्षा करना है और इसीलिए इस गठबंधन को आगामी दिनों में भी निरंतरता दी जाएगी। तनहू की भानुनगर पालिका वार्ड नंबर 1 के भंसार में आयोजित कार्यक्रम में नेता पौडेल ने कहा कि देश का विकास करना और इसे समृद्ध बनाना ही उनकी पार्टी का लक्ष्य है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा कि ईमानदारी, नैतिक मूल्य और मान्यता की राजनीति वर्तमान समय की आवश्यकता है। आज काठमांडू में आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम में महामंत्री शर्मा ने कहा कि राजनीतिक रूपांतरण के लिए नई सोच, शैली और दृष्टिकोण जरूरी है। साथ ही महामंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए एक व्यक्ति का एक कार्यकाल, प्रधानमंत्री के लिए 2 बार, मंत्री के लिए 3 बार और सांसद पद के लिए 4 बार से ज्यादा न होने की वैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाली कांग्रेस के नेता प्रदीप गिरी की स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी ली। राष्ट्रपति भंडारी ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए सांसद गिरी के स्वास्थ्य की अवस्था के बारे में जानकारी लेने पहुंची। राष्ट्रपति भंडारी ने सांसद गिरी के स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। राष्ट्रपति भंडारी को अस्पताल के संचालक समिति के अध्यक्ष डॉ उपेन्द्र महतो ने नेता गिरी की स्वास्थ्य अवस्था के बारे में जानकारी दी। इससे पहले आज ही नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने भी गिरी के स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी ली थी। भौतिक पुराधार तथा यातायात मंत्री मोहम्मद इस्तियाक राइन ने कहा कि विकास संबंधी मुद्दों पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आज बांके के नेपालगंज स्थित जमुनाहा से कोहलपुर तक बनाए जाने वाली 5 फ्लाईओवर और असफाल्ट सड़क योजना का शिलान्यास करते हुए मंत्री राइन ने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर जनता को विभाजित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह ने कहा कि सरकार को ईंधन की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए। आज काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 के लाखे चौर में निर्मित सामुदायिक हॉल का उद्घाटन करते हुए नेता सिंह ने कहा कि आम जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए सरकार को ईंधन की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि देश में स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 बार तक ईंधन की कीमत में गिरावट आई, लेकिन बावजूद इसके नेपाल में ईंधन की कीमत में कोई रियायत नहीं दी गई, जो कि देश की जनता के लिए दुखद है। आज देशभर में कोरोना के 299 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह 577 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई। बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 4625 है। आज ही 18,670 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी है। भारतीय सीमा से जुड़े बैतड़ी जिले में कोरोना संक्रमण का जोखिम बढ़ने के साथ ही इससे बचने के लिए पूर्व तैयारी की गई है। जोखिम न्यूनीकरण और व्यवस्थापन के लिए जिला अस्पताल भवन में 10 शैया वाला आइसोलेशन भवन तैयार किया गया है। दशरथ चंद नगर पालिका और जिला अस्पताल के सहकार्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर संक्रमितों को व्यवस्थित करने के लिए आइसोलेशन भवन तैयार किया गया है। ये जानकारी जिला अस्पताल बैतड़ी के सूचना अधिकारी हरीश पंत ने दी। बांके में करंट लगने से पिता और बेटे की मौत हो गई। नेपालगंज उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 17 निवासी 40 वर्षीय परशुराम कलवार और 25 वर्षीय बबलू कलवार की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बांके के डीएसपी राम प्रसाद घरती ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में शुक्रवार की देर रात आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने हयात होटल में घुसकर फायरिंग की, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि पहले हयात होटल के बाहर खड़ी 2 कारों में ब्लास्ट हुए, इसके बाद आतंकी होटल में घुसे और लोगों के बीच फायरिंग शुरू कर दी। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक होटल में सिक्योरिटी फोर्स और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हमले में मोगादिशु के खुफिया प्रमुख मुहिद्दीन मोहम्मद घायल हुए हैं। इस्लामी आतंकवादी समूह अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि 28 जुलाई को सोमालिया में अलग अलग बम हमलों में 19 लोगों की मौत हो गई थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। निकपा माओवादी केंद्र की स्थायी कमेटी की बैठक ने महासचिव पद पर देव गुरुंग सहित 20 पदाधिकारियों के नाम किए तय। नेपाली कांग्रेस ने आगामी चुनाव लक्षित अभियान के कार्यक्रम किए सार्वजनिक। देशभर में आज कोरोना के 299 मामले नए आए सामने और अफ्रीकी देश सोमालिया के मोगादिशु स्थित हयात होटल में आतंकवादी हमला, कम से कम 12 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।